بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ فتح کی 28ویں اور 29ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں عبدالعزیز حسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول اللہ، والذین معه اشداء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، وہی وہ ایشور ہے جس نے اپنے پیغمبر کو مارگ درشن اور ستیہ دھرم کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سبھی دھرموں پر پربھتو پردان کرے، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی پریاپت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے اتیانت کڑے اور آپس میں اتیانت دیالو ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ ایشور کے سمکش جھکے ہوئے اور نتمستک ہو کر اپنے پالنہار سے انوگرہ اور دیا و کرپا کے اچھک ہیں۔ اتیادھک سجدوں کے کارن ان کے چہروں پر سجدوں کے چن ہیں۔ ان کی یہی وشیشتا توریت میں ہے اور ان کی یہی وشیشتا انجیل میں ہے۔ جیسے کوئی کھیتی ہو جو پہلے اپنا انکر نکالے، پھر اسے سشکت بنائے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو جائے کہ جو کھیتی کرنے والوں کو بھانے لگے تاکہ ان کے مادھیم سے کافروں کو جلایا جائے، اور ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کرم کرتے رہے ان سے اللہ نے کشما اور مہان پرتیفل کا وعدہ کیا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، آج بدھوار ہے، فروری کی 23، رجب کی 21 اور اسفند ماہ کی 4 تاریخ۔ کارکرم کا آرمبھ ہم وشو سماچاروں سے کریں گے، پھر آپ راجنیتک چرچا سنیں گے، جس کے اوپرانت ساپتاہک کارکرم شوری گاتھا پیش کیا جائے گا۔ سبھا کے انت میں ہم آپ کو سنوائیں گے کارکرم آج کل۔ تو شروتاؤ، یہ تھی روپ ریکھا۔ کچھ ہی چھڑوں میں وشو سماچار پیش کیے جائیں گے۔ یہ تہران ہے۔ اب آپ مریم مہردادی اور قائم رضوی سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ امریکی سانسدوں کا کہنا ہے کہ کانگریس کی انومتی کے بنا روس کے ورودھ کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیل نے قنیطرا پر میزائل سے حملہ کیا ہے۔ عراق کے سوئم سیوی بل نے نئے ریزرو بل کے گٹھن کی سوچنا دی ہے۔ راشٹروادی کانگریس پارٹی کے نیتا نواب ملک کو آج گرفتار کر لیا گیا۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
امریکی سانسدوں نے بائیڈن سے مانگ کی ہے کہ کانگریس کی انومتی کے بنا وہ روس کے ورودھ کوئی بھی قدم نہ اٹھائیں۔ امریکی سانسدوں نے اس دیش کے راشٹرپتی کے نام ایک پتر لکھا ہے، جس میں ان سے مانگ کی گئی ہے کہ یوکرین سنکٹ کو لے کر روس کے ورودھ کسی بھی پرکار کے سینیہ ہستکشیپ سے پہلے کانگریس سے انومتی حاصل کی جائے۔ پتر میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی پرکار کے سینیہ ہستکشیپ سے پہلے امریکی جنتا کو اس کے بارے میں پوری جانکاری ہونی چاہیے۔ اس پتر کے انوسار بائیڈن کی سرکار اگر کسی بھی پرکار کا سینیہ ہستکشیپ کرنا چاہتی ہے تو پہلے کانگریس سے بات کرے اور کانگریس اس کام کے لیے تیار ہو۔ امریکی سانسدوں کا کہنا ہے کہ انتراشٹری سنکٹ میں امریکہ کے ہستکشیپ کے بارے میں ہمیں پہلے دیش کی جنتا کو اوگت کروانا ہوگا۔ اسی بیچ امریکہ کے ودیش منتری نے اپنے روسی سمکش کے ساتھ آگامی بھیٹ وارتا کو رد کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ روس دوارا دونیتسک اور لوہانس کو مانیتا دینے کے بعد امریکہ نے روس سے کچھ ادھیکاریوں اور بینکوں کے ورودھ پرتیبندھ لگائے ہیں۔
روس کے ودیش منتری نے کہا ہے کہ سنیوکت راشٹر سنگھ کے مہا سچیو پشچم کے دباؤ میں ہیں۔ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ راشٹر سنگھ کے مہا سچیو پشچم کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں۔ روسی ودیش منتری نے بدھوار کو راشٹر سنگھ کے مہا سچیو گوٹیرس کے کریا کلپوں کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسپشٹ ہے کہ وہ پشچم کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پوروی یوکرین کے گھٹنا کرم کے سمبندھ میں گوٹیرس کے حالیہ بیانوں اور ان کے پد کی گریما میں ورودھابھاس پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوٹیرس نے کبھی بھی मिन्सक समझौते के समर्थन के बारे में कोई बात नहीं कही। रूस द्वारा दोनेत्स्क और लुहान्स्क गणराज्यों को मान्यता देने पर राष्ट्रसंघ के महासचिव ने इसकी आलोचना करते हुए इसे यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। इसी बीच यूक्रेन के विपक्ष ने देश के राष्ट्रपति से त्यागपत्र की मांग की है। यूक्रेन के विपक्ष का आरोप है कि देश के विदेशी सहयोगियों और समर्थकों और नागरिकों की मांगों के बावजूद सरकार ने मिन्स्क समझौते को लागू कराने के लिए पिछले ढाई वर्षों में एक भी कदम नहीं उठाया।
ज़ायोनी शासन ने सीरिया के कुनैतरा पर मिसाइल से हमला किया। ज़ायोनी सैनिकों ने बुधवार की सुबह सीरिया के दक्षिण में स्थित कुनैतरा नगर की ओर कुछ मिसाइल दागे। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये हमला गोलान हाइट्स के निकट एक सैन्य क्षेत्र पर किया गया। सन 1974 में होने वाले संघर्ष विराम के बाद गोलान हाइट्स के निकट सीमा रेखा निर्धारित की गई है, जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बल तैनात हैं। सीरिया संकट के दौरान इसराइल का प्रयास यही था कि वो गोलान हाइट्स के माध्यम से कुनैतरा में सक्रिय आतंकवादी गुटों का समर्थन करता रहे। इस क्षेत्र में प्रतिरोध के मौजूद होने से अवैध ज़ायोनी शासन अब चिंतित है। यही वजह है कि वो विभिन्न वाहनों से कुनैतरा से लगे हुए क्षेत्रों पर हमले करता रहता है, ताकि उसके ये प्रयास क्षमा कीजिएगा हालांकि उसके ये प्रयास भी विफल हो रहे हैं।
सीरिया के सैनिकों ने एक अमरीकी सैन्य कारवान का रास्ता रोककर उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। अल अखबार टीवी चैनल के अनुसार सीरिया के सैनिकों ने बुधवार को उस अमरीकी सैन्य कारवान को रोक दिया जो पूर्वोत्तरी सीरिया के अलहस्का क्षेत्र की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। यह अमरीकी सैन्य कारवां अलहस्का के खवाइलत क्षेत्र में जाना चाहता था। सीरिया के पूर्वोत्तरी क्षेत्र के लोग इससे पहले कई बार अमरीकी सैनिकों के काफिलों को वहां आने से रोक चुके हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अमरीकी सैनिक गैर कानूनी ढंग से क्षेत्र के तेल और अन्य स्रोतों का दोहन करते हैं। इसके अतिरिक्त वे कई बार स्थानीय लोगों के विरुद्ध कार्रवाइयां भी अंजाम दे चुके हैं। अभी हाल ही में अमरीकी सैनिकों को सीरिया में दाइश के आतंकवादियों को इधर से उधर करते हुए देखा गया था। सीरिया के लोगों का ये मानना है कि देश में आतंकवादी गुटों की कमर टूटने के साथ ही अमरीकी सैनिकों ने उनका स्थान ले लिया है और वे वहां पर तेल की चोरी के अतिरिक्त आतंकी कार्रवाइयां भी करते रहते हैं।
इराक के स्वयंसेवी बल हश्दु शाबी ने नए रिजर्व बल के गठन की सूचना दी है। दियाला प्रांत में इराकी स्वयंसेवी बल के प्रवक्ता सादिक अल हुसैनी का कहना था कि सुरक्षा बलों के समर्थन और उनको बैकअप देने के उद्देश्य से रिजर्व बल का गठन किया जा रहा है। इराकी स्वयंसेवी बल हश्दु शाबी के दियाला प्रांत के प्रवक्ता ने बगदाद अलियोम से बात करते हुए कहा कि स्वयंसेवी बल की यह टुकड़ी आपातकालीन स्थिति से निपटने और युद्ध की स्थिति में सैनिकों को मदद पहुंचाने के लिए उच्च क्षमताओं से संपन्न होगी। चूंकि दियाला प्रांत में बहुत अधिक सुरक्षा खतरे हैं और यहां पर आतंकवादी गुट दाइश की गतिविधियां भी ज्यादा रही हैं, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आतंकवादियों से मुकाबले और आबादी वाले क्षेत्रों की रक्षा की रणनीति बदली जाए।
वेस्ट बैंक में इसराइली सैनिकों की फायरिंग से एक फिलिस्तीनी युवा शहीद हो गया। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी मान की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को वेस्ट बैंक के अलखजर इलाके में होने वाली झड़पों में इसराइली सैनिकों की गोली का निशाना बनकर 14 वर्षीय फिलिस्तीनी युवा मोहम्मद शाहदा शहीद हो गया। इसराइली सैनिकों ने वेस्ट बैंक के विभिन्न क्षेत्रों में फिलिस्तीनियों पर हमला करके अनेक फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया। दूसरी ओर इसराइली सैनिक अपंग और बीमार फिलिस्तीनियों पर भी रहम नहीं कर रहे हैं। इसराइली सैनिकों ने अवैध अधिकृत बैतुल मुकद्दस के शेख जर्रा क्षेत्र में खतरनाक और जानलेवा डाउन सिंड्रोम बीमारी का शिकार फिलिस्तीनी अपंग युवा पर हमला कर दिया। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार इस युवा का नाम मोहम्मद अल बुजोनी था और उस पर अन्य ग्रामवासियों के साथ हमला किया गया। फिलिस्तीनी नागरिक शेख जर्रा के निवासियों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइली सैनिकों ने उन लोगों पर भी हमला कर दिया जो इस अपंग युवाओं के समर्थन में सड़कों पर निकले थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं।
सऊदी अरब के जिद्दा शहर की दीवारों पर आले सऊद खानदान के खिलाफ नारे लिखे जा रहे हैं। जिद्दा शहर में बड़े पैमाने पर होने वाली विध्वंसक और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के विरोध में इस देश के क्राउन प्रिंस को भी लोगों ने आड़े हाथ लेते हुए पूरे शहर में वॉल चौकिंग और अत्याचारी तानाशाह मुर्दाबाद के नारों से शहर की पूरी दीवारें भर दी हैं। जिद्दा में बड़े पैमाने पर निर्माण योजना और बड़ी संख्या में लोगों के बेघर होने के बाद वहां की जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। वे लोग अब वॉल चौकिंग द्वारा अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। सऊदी लीक्स की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया पर जारी होने वाली तस्वीरों को देखने से ये पता चलता है कि विरोधियों ने मोहल्लों को तोड़ने और ख़राब करने की कार्रवाइयों के साथ ही साथ देश के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी टारगेट किया है और वे अत्याचारी मुर्दाबाद, तानाशाह मुर्दाबाद जैसे नारों को दीवारों पर लिख रहे हैं। रिपोर्ट में आया है कि जिद्दा अपने इतिहास के सबसे बड़े विध्वंसक प्रोजेक्ट का सामना कर रहा है। इस कार्रवाई में 60 से अधिक मोहल्ले शामिल हैं। इसके बावजूद इन मोहल्लों में से कुछ बहुत ही आधुनिक और मॉडर्न है, लेकिन आले सऊद तथा कथित सुधार के नाम पर गरीब मोहल्लों को तबाह कर रहा है। आले सऊद का ये दावा है कि इस मोहल्ले के निवासी गुंडे और बदमाश हैं।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय संचार माध्यमों के अनुसार धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक से पूछताछ कर रही थी। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि नवाब मलिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। नवाब मलिक को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया है। वहीं नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने एजेंसी के दफ्तर के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 62 साल के नेता नवाब मलिक बेलार्ड स्टेट इलाके में स्थित ईडी के ऑफिस में सुबह 8 बजे पहुंचे थे। एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनका बयान दर्ज किया था। बयान दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा था कि एजेंसी संपत्तियों की खरीद फरोख्त से मलिक के कथित तौर पर जुड़े होने की जांच कर रही है, इसलिए उनसे पूछताछ की गई। हालांकि ईडी दफ्तर से निकलने के बाद मलिक काफी खुश नजर आए और उन्होंने एजेंसी के दफ्तर के बाहर खड़े अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया था।
स्विस बैंक से लीक होने वाला डेटा बताता है कि पाकिस्तान की आईएसआई के पूर्व प्रमुख ने अफगानिस्तान के मुजाहिदों के लाखों डॉलर हथिया लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार बैंकिंग फर्म क्रेडिट स्विस की जानकारी के हिसाब से पाकिस्तान की आईएसआई के भूतपूर्व प्रमुख जनरल अख्तर अब्दुल रहमान ने उन लाखों डॉलरों को अपने बेटों के स्विस अकाउंट में डलवा दिया जो अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को भेजे जाते थे। अख्तर अब्दुल रहमान पाकिस्तान के भूतपूर्व सैन्य शासक जियाउल हक के बहुत करीबी थे। अपनी इसी नज़दीकी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने 1980 के दशक में अफगानिस्तान के मुजाहिदों को मिलने वाली लाखों डॉलर की राशि को अपने बेटों के खातों में डलवा दिया। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। रूस द्वारा पूर्वी यूक्रेन के दोनेस्क और लुहांस्क नामक क्षेत्रों को आजाद क्षेत्रों के रूप में मान्यता देने के बाद दुनिया भर से विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जायजा ले रहे हैं अख्तर अब्बास।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से पूर्वी यूक्रेन में स्थित दोनेस्क और लुहांस्क नामक क्षेत्रों को सरकारी तौर पर आजाद क्षेत्रों के रूप में स्वीकार किए जाने के आदेश के बाद दुनिया के विभिन्न देशों की ओर से विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अमरीका ने रूस के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की धमकी भी दे दी है। पूर्वी यूक्रेन में दोबांस का क्षेत्र दोनेस्क और लुहांस्क सहित विभिन्न रूसी मूल के निवासियों पर आधारित है और दोनों प्रांतों ने 2014 में यूक्रेन में सरकार परिवर्तन के बाद कीव से अपनी आजादी का ऐलान कर दिया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार की रात रूसी जनता से अपने संबोधन में दोनेस्क और लुहांस्क नामक गणतंत्रों को सरकारी तौर पर स्वीकार किए जाने का ऐलान किया, जिस पर विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस ऐलान के बाद दोनेस्क और लुहांस में लोगों ने जश्न मनाया और सड़कों पर निकलकर पटाखे फोड़े। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने पहले बयान में इसे यूक्रेन पर रूस की चढ़ाई की संज्ञा दी और उसके विरुद्ध कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया। अमरीकी राष्ट्रपति ने रूस के दो बड़े बैंकों VBI और PSB को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने दावा किया कि रूस के ये दोनों बैंक या दोनों वित्तीय संस्थाएं रक्षा और आम बजट को पूरा करने में अहम भूमिका अदा करती हैं। उधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस के 5 बैंकों और 3 अमीर लोगों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। बोरिस जॉनसन ने इसे प्रतिबंधों का पहला चरण करार दिया और कहा कि इन तीनों अरबपतियों की संपत्तियां सील की जाती हैं और इनके ब्रिटेन की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जबकि ब्रिटेन के सारे लोगों और संस्थाओं को इनसे किसी भी प्रकार के लेन देन से रोका गया है। यूरोपीय संघ भी रूस के विरुद्ध प्रतिबंधों से पीछे नहीं रहा और उसने जुमा के 351 लोगों, 27 व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं को निशाना बनाया और प्रतिबंध लगा दिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और अब रुख करते हैं भारत का। महाराष्ट्र की विकास अघाड़ी सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर एनसीपी और शिवसेना के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ब्यौरा दे रहे हैं नई दिल्ली से शमशाद काजमी।
महाराष्ट्र में जहां शिवसेना के नेतृत्व में गठबंधन सरकार सत्ता में है, उस समय राजनीतिक खलबली मच गई जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय की टीम सुबह 5 बजे उनके घर से पूछताछ के लिए ले गई। एनसीपी और शिवसेना के नेता लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। जानकारी के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय जो जांच कर रहा है, उसी संदर्भ में नवाब मलिक से पूछताछ की गई और कई घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नवाब मलिक से पूछताछ और गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार ने आपत्ति जताई और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को जिस प्रकार एक पुराना मामला निकालकर पूछताछ के बहाने घर से ले जाया गया, वे महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती है। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप जांच कर सकते हैं, लेकिन 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी।
कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं, जांच कर सकते हैं आप। पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है, 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी।
राउत ने कहा कि आने वाले दिनों में मैं भी खुलासे करने जा रहा हूं, इसके लिए मुझे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले ने कहा कि बिना किसी नोटिस के महाराष्ट्र के मंत्री को उनके घर से प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर ले गए, ये महाराष्ट्र का अपमान है।
वो जो षड्यंत्र महाविकास आघाड़ी के खिलाफ ये बीजेपी के प्रवक्ता और सब कर रहे थे, वो आज होते हुए पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। दुख की बात ऐसी है कि ना नोटिस आई ना कुछ आया, महाराष्ट्र के एक मंत्री को डायरेक्टली ईडी ने ईडी के ऑफिस में लेके गए। ये कौन सी नई राजनीति इन्होंने शुरू की है।
उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से भाजपा के लोग ट्वीट कर रहे थे कि नवाब मलिक और महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार के विरुद्ध ईडी का नोटिस आएगा। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किस प्रकार की नई राजनीति शुरू की है। नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के करीबी लोगों से करोड़ों की संपत्ति केवल 30 लाख रुपए में खरीदी थी। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले और नवाब मलिक के दूसरे व्यावसायिक मामलों की जांच कर रहा था। उन पर अंडरवर्ल्ड से संपर्क का आरोप भी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल नवंबर में दावा किया था कि नवाब मलिक ने दाऊद के निकट जिन लोगों से जमीन खरीदी थी उनमें एक मुंबई बम धमाकों में शामिल था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बम धमाकों में उम्र कैद की सजा काट रहे शाह वली खान और हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल के साथ नवाब मलिक के व्यावसायिक संबंध हैं। इस घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में और उबाल आ सकता है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए चौथे चरण का मतदान हुआ है। ब्यौरा दे रहे हैं लखनऊ से मोहसिन रिजवी।
यूपी विधानसभा के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 5 बजे तक तकरीबन 57.45% मतदान हो चुका है। अभी भी लोग लाइनों में लगे हुए हैं। 6 बजे के पहले जो लोग भी लाइनों में लग चुके हैं वो वोट कर सकेंगे। फाइनल वोटिंग परसेंटेज बाद में साफ हो पाएगा। सबसे ज्यादा अभी तक वोट 62.45% लखीमपुर खीरी में पड़े हैं। 61.42% के साथ पीलीभीत दूसरे नंबर पर है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके बांदा सदर विधानसभा में 305 और 306 नंबर की बूथ की कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि शिकायत के लिए डीएम से संपर्क किया गया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की है। उधर लखीमपुर खीरी के बनबीरपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी वोट डालने पहुंचे। उनकी सुरक्षा में बड़ी तादाद में जवान तैनात थे। इस दौरान पत्रकार उनसे सवाल करते रहे लेकिन जवाब नहीं मिला। टेनी के बेटे अजय पर लखीमपुर में किसानों को जीप से कुचलकर मार देने का आरोप है। वहीं यूपी में चुनावी पंडित चाहे जो अनुमान लगाएं, लेकिन फिलहाल हर पार्टी के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वोट डाला। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा,
मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं 2017 के विधानसभा चुनाव में जितनी सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी कमोबेश उतनी ही सीटों पर इस बार भी हमको कामयाबी हासिल हो गया।
इससे पहले लखनऊ में वोट डालने के बाद मायावती ने कहा कि इस बार मुसलमान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से खुश नहीं हैं। उन्होंने सपा को नकार दिया है क्योंकि उसे वोट देने का मतलब गुंडाराज और माफिया राज है। उनकी सरकार में विकास नहीं दंगे होते हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अगली सरकार बहुजन समाज पार्टी की होने का दावा किया।
बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की तरफ अग्रसर है। और उसमें जो पहले तीन चरण में वोट पड़े हैं उसके बाद जो आज का भी वोट पड़ रहा है आप देख लेंगे शाम तक 5 बजे तक कि बहुजन समाज पार्टी को एक तरफा वोट पड़ेगा।
उधर मशहूर शायर मुनव्वर राणा का नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला, इसके चलते वो बुधवार को लखनऊ में अपना वोट नहीं डाल पाए। राणा लखनऊ के कैंट विधानसभा के वोटर हैं। उनसे पूछा गया कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के पीछे क्या कोई साजिश है। इस पर राणा ने कहा कि 10 मार्च के बाद सब बदलेगा, जब तक ये हार का मुंह नहीं देखेंगे तब तक इन लोगों को समझ नहीं आएगी। यहाँ जानना जरूरी है कि इस फेज में योगी सरकार के 4 मंत्री समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लखनऊ कैंट से कानून मंत्री बृजेश पाठक और मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्व से चुनावी समर में हैं। गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली सदर से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में एंट्री करने वाली अदिति सिंह मैदान में हैं। वहीं पुलिस अधिकारी की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखने वाले राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से भाजपा उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला समाजवादी के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्र से है। लखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रविदास मेहरोत्रा किस्मत आजमा रहे हैं। हरदोई से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल की साख भी दांव पर लगी हुई है। 2017 में इन 59 सीटों का रिजल्ट कुछ ऐसा था, 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई, 2 सीटें बसपा को मिली और 2 सीट कांग्रेस के खाते में गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। अब 10 मार्च को देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर 59 सीटों पर जनता ने किसे चुनकर विधानसभा भेज दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। 7 मार्च को आखिरी चरण का चुनाव होगा और 10 मार्च को रिजल्ट सबके सामने होगा। मोहसिन रिजवी, रेडियो तेहरान, लखनऊ।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई। ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम शौर्य गाथा और उसके बाद आप सुनेंगे अंतिम कार्यक्रम आज कल।
शौर्य गाथा।
दोस्तों, प्रोग्राम शौर्य गाथा की एक और कड़ी के साथ हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में सभी मोर्चों पर ईरानी फौज से हार की बात, पूर्व इराकी तानाशाह सद्दाम के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 598 मानने के बारे में चर्चा करेंगे। स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार करें।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम शौर्य गाथा में 80 के दशक में ईरान पर इराक के बासी सद्दाम शासन के हमले के मुकाबले में ईरानी राष्ट्र की पवित्र प्रतिरक्षा और इस दौरान ईरानी राष्ट्र के वीर सपूतों के शौर्य के बारे में आपको बता रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि सद्दाम ने सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव 598 के मानने के बाद ईरान के भीतर हमला किया था, जिसमें इराकी फौज को हार हुई थी।
ईरान पर थोपी गई जंग उस दिन खत्म हुई जब इराकी बासी फौज अहवाज और किरमानशाह के एक्सेस पर दोबारा अपनी प्रगति को जारी नहीं रख सकी। इराकी बासी फौज के अहवाज खुरमशहर मार्ग पर दोबारा कब्जा करने के बाद 23 जुलाई 1988 को उसे ईरानी वीरों द्वारा दोबारा खदेड़े जाने और किरमानशाह के करीब पातक दर्रे में एमकेओ के हमले के 25 जुलाई 1988 को मिर्साद ऑपरेशन में नाकाम होने पर सद्दाम प्रस्ताव 558 को व्यावहारिक रूप से मानने पर मजबूर हुआ।
जंग के मोर्चे पर ईरानी वीरों की बड़ी तादाद और अहवाज तथा उत्तरी खुर्रम शहर के इलाकों से इराक की बासी फोर्सेस के बाहर निकलने और इसी तरह एमकेओ के ऑपरेशन की नाकामी की वजह से जंग के मोर्चे पर हालात ईरान के हित में बदल गए। جنگ کے میدان کے حالات میں بدلاؤ سے ایرانی مورچے پر راشٹر کے ویر سپوتوں کا منوبل اتنا بڑھ گیا کہ وہ باسی دشمن کو عراق کے بھیتر تک کھدیڑنے کے لیے تیار تھے۔
اس وقت تتکالین راشٹرپتی کے روپ میں آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اہواز کے دورے پر تھے۔ انہوں نے وہاں سے اسلامی کرانتی کے سنستھاپک امام خمینی کے بیٹے احمد خمینی سے سمپرک کر کہا تھا کہ ایران آپریشن جاری رکھ سکتا ہے۔ احمد خمینی نے یہ بات امام خمینی کو بتائی تو امام خمینی نے جواب میں کہا تھا، کسی بھی حالات میں عراق کی بھومی پر حملہ مت کیجیے، ایک گولی بھی ان کی طرف فائر مت کیجیے، اگر انہوں نے بمباری کی اور آپ کو اس کا جواب دینا صحیح لگے تو بمباری کا حکم دیجیے، اپنی فورسز کو تیار رکھیے کہ اگر انہوں نے حملہ کیا اور کسی بھاگ پر قبضہ کیا تو آپ بھی ان پر حملہ کیجیے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ پرستاو کو قبول کرنا ٹیکٹک نہیں ہے، حملہ اس کا الگھن ہوگا، پہلے یا بعد میں سنگھرش ورام نہیں ہوگا۔
ایران کی طرف سے پرستاؤ 598 سویکار کیے جانے سے لے کر اسے لاگو کرنے کے بیچ یعنی 18 جولائی سے 19 اگست 1988 کے بیچ نیو یارک میں یو این کے ذریعے ایران اور عراق کے پڑوسیوں کے بیچ ڈائریکٹ بیٹھکیں ہوئی۔ اس بیچ سنیکت راشٹر سرکشا پریشد 19 اگست 1988 کو بیٹھک ہوئی جس میں پرستاؤ 619 پاس ہوا، جس کے نتیجے میں یو این کے انیک راشٹریتا والے قریب 400 لوگوں پر آدھارت سینے پریویکشک ایران اور عراق میں تعینات ہوئے۔ ایران عراق اور یو این کے بیچ ترپکشی بیٹھک کے نتیجے میں ایران اور عراق کی فورسز اپنے اپنے دیش کی سیماؤں کی اور لوٹ گئیں اور یو این پریویکشکوں کی نگرانی میں دونوں دیشوں کے بیچ 19 اگست 1988 کو جنگ کے مورچے پر سنگھرش ورام لاگو ہوا اور ویوہارک روپ سے 20 اگست 1988 کو جنگ ختم ہو گئی۔
ایران عراق کے بیچ جنگ کا ختم ہونا اس بات سے ہٹ کر کی وارتا کی میز پر دونوں پکشوں کے مت بھید کے حل ہونے کے باوجود حالات کا شتیج اسپشٹ تھا، دو آیام سے اہمیت رکھتا ہے، ایک فارس کی کھاڑی کے رننیتک نظر سے اہم علاقے میں 8 سال سے جاری سینی جھڑپ ختم ہوئی اور شیتر میں سمبھاوت استھرتا و سرکشا کا دور شروع ہوا، اور دوسرا شیتر میں سنتولن لانے میں جنگ کے ختم ہونے کا اثر دکھا اور شیتر کے دو کھلاڑیوں ایران اور عراق کا سمبھاوت ویوہار طے ہو گیا۔ ایران عراق جنگ کے ختم ہونے کے بعد کویت پر عراق کے قبضے تک کو جو بھی حالات بنے ان پر ان وچاروں کا اثر تھا۔
نیو یارک ٹائمز نے ایک لیکھ میں لکھا تھا کہ ایران پر حملے کے پیچھے صدام کا لکش ایران کی نئی اسلامی ویوستھا کا گرانا تھا اور خوزستان پرانت پر قبضہ کرنا تھا۔ اس اخبار نے اپنے لیکھ میں لکھا تھا، صدام کا حملہ سمکالین اتہاس کی سب سے بڑی ہار میں سے ایک ہے، کیونکہ اس حملے کے نتیجے میں آیت اللہ خمینی کے اسلامی شاسن کے پیچھے ایرانی ایک جٹ ہو گئے اور 8 سال کی جنگ چھڑ گئی۔ جنگ میں عراق کی جیت ہوئی یا ہار، اس کی سمیکشا کے لیے سب سے اچھا ماندنڈ 8 سال جنگ کے بعد عراق کی باسی فورسز کی تعیناتی کی جگہ ہو سکتی ہے۔ اس کے مد نظر صدام نہ صرف یہ کہ اپنا لکش حاصل نہیں کر سکا بلکہ جنگ کے 8 سال چھیتری و انتراشٹری استر پر بڑے استر پر سمرتھن سے اپنے راجنیتک آرتھک و سینے جیون کی گاڑی کھینچ سکا اور اسی چیز سے بڑی طاقتوں پر عراق کی نربھرتا بڑھ گئی۔ صدام دو بڑی طاقتوں ان کے گھٹکوں اور فارس کی کھاڑی کی عرب سرکاروں کے بڑے پیمانے پر سمرتھن کے باوجود نشچت سینک کامیابی حاصل نہ کر سکا، جبکہ اسلامی گڑتنتر ایران جن سمرتھن سے 8 سال کی پرتیرکشا کے کال میں کرانتیکاری و دھارمک مولیوں والی اپنی راجنیتک ویوستھا کو قائم کر سکا۔
ایران کے خلاف تھوپی گئی جنگ کے نتیجے میں جہاں ایک اور ایران اور عراق کی فورسز کے بیچ جھڑپ ختم ہو گئی، وہیں شیتری دیشوں کا دھیان عرب اسرائیل مدے سہیت شیتری مدوں کی اور مڑ گیا۔ اس بارے میں بی بی سی لندن نے ایران عراق جنگ کے انت کا ایک سمبھاوت پریڑام عرب اسرائیل مدبھید پر دھیان کیندرت ہونا کہا تھا۔ اس بات میں شک نہیں ہے کہ یہ بدلاو زائنیوں کے لیے اچھا نہیں تھا۔
ایران کی اور سے پرستاؤ 598 سویکار کیے جانے کے بعد زائنی شاسن کے تتکالین پردھان منتری اسحاق شمیر نے کہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ پورے شیتر میں ایک نئے دور کے آغاز کے ارتھ میں ہو۔ اس طرح ایران عراق کا بھوش اور اس کا فارس کی کھاڑی کے شیتر میں سنتولن میں اثر، پشچم ایشیا کے حالات کے بارے میں ان دونوں دیشوں کا رویہ، عرب اسرائیل مدبھید اور شیتر کے سنتولن کا سمبھوتا اسرائیل کے نقصان میں بدلنا، وہ مدے تھے جن پر ایران عراق جنگ کے ختم ہونے پر زائونیوں اور ان کے سمرتھکوں نے دھیان دیا اور اس سمبندھ میں انہیں چنتا ہوئی۔ ایران عراق کے بیچ 1988 میں پتجھڑ کے موسم میں جنیوا میں یو این کی مدھیستتا سے ایسے حالات پیدا ہوئے اور ایسے میں بات چیت شروع ہوئی کہ اسلامی گڑتنتر ایران پر صدام شاسن کی تھوپی گئی جنگ کے انت کے شیتری انتراشٹری استر پر اثر کے بارے میں انیک طرح کی اٹکلیں لگائی جا رہی تھیں۔
ایران عراق کے بیچ سنگھرش ورام کے بعد یو این نے دونوں دیشوں کو وارتا کی میز پر آنے کا سجھاؤ دیا۔ ایسے حالات میں عراق اور خاص طور پر ایران بات چیت کے لیے تیار نہ تھا۔ کئی مہینے کے بعد 1988 کے پتجھڑ کے مہینے میں یو این نے جنیوا میں تریپکشی بیٹھک کے آیوجن کا سجھاؤ دیا، جس میں ایران عراق کے علاوہ تیسرا پکش یو این ہو۔ اس وارتا میں ایران اور عراق کے پرتنیدھی ایک دوسرے کی باتیں سنیں۔ اس یوجنا کے سامنے آنے پر ایران اور عراق دونوں کے پرتنیدھی الگ الگ دروازے سے وارتا کے ہال میں داخل ہوئے، جس میں یو این کے پرتنیدھی بھی شامل ہوئے۔ اس وارتا میں ایران اور عراق دونوں کے پرتنیدھی یو این کے پرتنیدھی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بات کرتے تھے۔ اس طرح ایران اور عراق کے بیچ خاموشی ٹوٹی اور دھیرے دھیرے دونوں پکشوں نے ایک دوسرے کا سامنا شروع کیا اور بات چیت کی۔
ایرانی ودیش منترالے نے سرکشا پریشد کے پرستاؤ 598 میں جتنے انوچھید تھے اتنی ہی تعداد میں کمیٹیاں گٹھت ہوئیں۔ 1990 کے گرمی کے موسم تک نیویارک اور جنیوا میں جو بات چیت ہوئی اس کا ماحول میراتھن دوڑ کی طرح تھا، کیونکہ صدام اس کوشش میں تھا کہ وہ وارتا پرکریا کے ذریعے اس لکش کو حاصل کرے جو وہ جنگ سے حاصل نہیں کر سکا۔ اس طرح ان وارتاؤں میں صدام کے پرتنیدھی انہیں دعووں کو دہراتے رہے جو دعوے وہ وگت میں کرتے رہے۔ ان وارتاؤں میں تتکالین عراقی ودیش منتری طارق عزیز اروند ندی کی تہ کی صفائی کا مدعا اٹھاتے رہے۔ ایران کو عراق کی اور سے 1975 کے سمجھوتے کے سویکار نہ کیے جانے کے مد نظر بغداد کی نیت پر شک تھا، اسی وجہ سے جنیوا وارتا ایک سال اسی وشے میں الجھی رہی۔
تو دوستوں، اگلے پروگرام میں ایران عراق وارتا اور بات چیت میں صدام کے نظریے میں تیزی سے آئے بدلاؤ کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمیں انومتی دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔
रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मरियम मेहर दादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई ने 17 फरवरी को तबरेज के लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो संबोधित किया था उसमें क्या कहा था। सर्वोच्च नेता ने 18 फरवरी सन 1978 के आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर पूर्वी अजरबैजान के लोगों को संबोधित किया था।
इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने उस संबोधन में कहा था कि तबरेज की जनता द्वारा आरंभ किए गए आंदोलन ने इस महान क्रांति को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पूरे इतिहास में 4 शताब्दी पहले से अजरबैजान राष्ट्रीय एकता का अग्रणी रहा है, जिसका मुख्य कारण यह है कि अजरबैजान लोगों को शिक्षित करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा कि क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रतिरोध ने साम्राज्य की धौंस को खत्म कर दिया है और उसने अमेरिका के मुकाबले में राष्ट्रों की जबान खोल दी है और इस नेमत को क्रांति के जारी रहने के साथ गनीमत समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लामी क्रांति का उद्देश्य वास्तविक प्रगति, भौतिक व आध्यात्मिक प्रगति, सामाजिक न्याय को व्यवहारिक बनाना, देश को मजबूत बनाना, इस्लामी समाज का गठन और अंततः बड़ी व महान इस्लामी सभ्यता का गठन है।
ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा को भविष्य की बुनियादी जरूरत बताया और कहा कि दुश्मन को पता है कि ईरान परमाणु हथियारों की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, फिर भी वो विघ्न उत्पन्न कर रहा है। उसकी वजह यह है कि वो भविष्य की जरूरतों को पूरा करने हेतु देश को प्रगति करने से रोकना चाहता है।
आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई ने कहा कि अजरबैजान के लोगों को एक बात जो सबसे अलग करती है और जो उनके सम्मान को दो बराबर करती है वो यह है कि पैगंबर इस्लाम के परिजनों का परचम हमेशा इस क्षेत्र के लोगों के हाथों में बुलंद रहा है और ये झंडा सदियों से ऐसे ही लहरा रहा है जिसे अजरबैजान के लोगों ने कभी भी झुकने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तबरेज की जनता ने कुछ ऐसा किया कि जमीनी स्तर पर आंदोलन आरंभ हो गया था। इसी प्रकार ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने अपने संबोधन में कहा था कि परमाणु मामले में ईरान से पश्चिम की दुश्मनी और पाबंदियों की मुख्य वजह ईरान को विज्ञान से रोकना है।
उन्होंने तबरेज के लोगों के आंदोलन को पूरी ईरानी कौम के आंदोलन की महत्वपूर्ण कड़ी और इस्लामी क्रांति की कामयाबी की भूमिका करार दिया। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई ने अपने भाषण में कहा कि कोरोना वायरस, आर्थिक मुश्किल, दुश्मनों के जहरीले प्रोपोगेंडों और कुछ आंतरिक तत्वों की ओर से इस घिनौने प्रोपोगेंडे की मदद जैसे अनेक मामलों व समस्याओं से घिरे होने के बावजूद लोगों ने इस्लामी क्रांति की सफलता की वर्षगांठ पर शानदार रैलियां निकाली। इस तरह से कि ज्यादातर प्रांतों में रैलियों में भाग लेने वालों की संख्या पिछले साल की अपेक्षा अधिक थी।
इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा कि इस साल इस्लामी क्रांति की सफलता की वर्षगांठ के कार्यक्रम वास्तव में आश्चर्यजनक और प्रशंसनीय थे।
क्योंकि कोरोना वायरस, आर्थिक मुश्किलों और दुश्मन के झूठे प्रोपेगेंडे के बावजूद लोगों ने पिछले साल से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लिया था। उन्होंने देश की मौजूदा जरूरतों के साथ ही भविष्य की जरूरतों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा कि अगर आज हमने वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक आंदोलन की मजबूती, नस्ल बढ़ाने, देश की तरक्की के लिए जरूरी तत्वों यानी नौजवानों के प्रशिक्षण जैसी भविष्य की बुनियादी जरूरतों के बारे में न सोचा तो 20 साल बाद हम समस्याओं में घिर जाएंगे।
ईरान की इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता ने परमाणु ऊर्जा को भविष्य की बुनियादी जरूरतों में करार दिया और कहा कि परमाणु मसले पर दुश्मन मोर्चे के अड़ जाने, हमारी तरफ से शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल सीमित होने की जानकारी के बावजूद अन्यायपूर्ण पाबंदियां लगाने, परमाणु बम से ईरान की दूरी का कम होने जैसे आधारहीन दावे फैलाने का मकसद ईरान की उस प्रगति को रोकना है जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की गारंटी है।
सवाल ये पैदा होता है कि जब इस्लामी क्रांति के दुश्मनों को भली भांति ज्ञात है कि ईरान की परमाणु गतिविधियां पूरी तरह शांतिपूर्ण लक्ष्यों के लिए हैं, तो फिर वे किन कारणों से ईरान परमाणु गतिविधियों के खिलाफ निराधार दावे करते रहते हैं। उसका एक जवाब ये है कि इस प्रकार के दावों की मुख्य वजह ईरान को प्रगति से रोकना है। इस्लामी व्यवस्था के दुश्मनों को अच्छी तरह पता है कि अगर ईरान इसी तरह प्रगति करता रहा तो वो पूरी दुनिया के लिए आदर्श हो जाएगा और दूसरे राष्ट्र व देश भी साम्राज्यवादियों के खिलाफ बोलना आरंभ कर देंगे, और जब दूसरे देश साम्राज्यवादी देशों और वर्चस्ववादी शक्तियों के खिलाफ बोलना व प्रतिरोध करना आरंभ कर देंगे तो दुनिया से वर्चस्ववादी शक्तियों का अंत होना आरंभ हो जाएगा, और ये वो चीज है जिसे कोई भी साम्राज्यवादी देश व शासन पसंद नहीं करेगा।
ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने पूर्वी अजरबैजान व तबरेज के लोगों को जो संबोधित किया था उसमें उन्होंने होशियारी से काम लेने पर बल दिया था और कहा कि लापरवाही और सुस्ती अगले वर्षों में समस्या पैदा होने का कारण बनेगी। आपने परमाणु समझौते की ओर इशारा किया और कहा कि सन 2015 और 2016 के वर्षों में परमाणु समझौते के बारे में मेरा एतराज ये था कि समझौते में कुछ बिंदु पर ध्यान दिया जाना चाहिए था ताकि बाद में मुश्किल पेश न आए, और मैंने उन्हें बार बार इस बात को याद दिलाया, लेकिन इनमें से कुछ बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया गया और बाद में वो मुश्किलें पेश आईं जिनको सभी देख रहे हैं, इसलिए भविष्य पर नजर रखना जरूरी है।
वरिष्ठ नेता ने क्रांति के बाद ईरान में आर्थिक हालात में बेहतरी के सिलसिले में वैश्विक संगठनों की स्वीकारोक्ति की ओर संकेत किया और कहा, सामाजिक न्याय, संपत्ति के न्यायपूर्ण बंटवारे और कमजोर वर्ग तक संभावनाएं पहुंचाए जाने के सिलसिले में हमेशा मेरी तरफ से टीका टिप्पणी होती है, लेकिन आर्थिक मामले में भी दुनिया के मशहूर आर्थिक केंद्रों की रिपोर्टों के मुताबिक ईरान में बड़ी तरक्की हुई है और इसी के साथ बहुत सारी चीज़ों में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने इस बात पर बल दिया कि पैदावार के क्षेत्र में अंजाम पाने वाले कारनामों को लोगों तक पहुंचाने में राष्ट्रीय मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी है। यह हक सही तरह से अदा नहीं हो पाया और ये काम ज़रूर अंजाम पाना चाहिए।
दोस्तों, इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा कि ईरानी कौम की गर्व करने की योग्यता, दृढ़ता और प्रतिरोध से न सिर्फ देश की तरक्की हुई बल्कि क्षेत्र पर भी उसका बहुत असर है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में दिन प्रतिदिन प्रतिरोध ने साम्राज्य के झूठे भ्रम के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और अमरीका के मुकाबले में कौमों को जबान खोलने की हिम्मत दी है और हमें क्रांति को जारी रख कर इस नेमत की कद्र करनी चाहिए।
इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने नौजवानों को नसीहत करते हुए कहा कि उन्हें ये देखना चाहिए कि दुश्मन ने किस चीज़ को लक्ष्य बनाया है। उन्हें उसके ठीक विपरीत काम करना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि दुश्मन ने आज जनमत में खास तौर पर नौजवानों के मन को निशाना बना रखा है, ताकि अरबों डॉलर खर्च करके और अपने थिंक टैंक्स में अनेक तरह की साजिशें तैयार करके ईरानी कौम, खास तौर पर नौजवानों को क्रांति के रास्ते से हटा सकें।
उन्होंने आर्थिक दबाव और मीडिया को इस्लामी व्यवस्था से लोगों को दूर करने और उनकी सोच खराब करने के लिए इस्तेमाल होने वाले साम्राज्य के दो मुख्य हथकंडे बताया और कहा कि झूठ और क्रांति के महत्वपूर्ण स्तंभों सहित क्रांति की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले केंद्रों के खिलाफ आरोप वो शैली है जिसके खिलाफ मीडिया काम कर रहा है।
आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई ने इसी तरह सभी लोगों, खासतौर पर नौजवानों को दुआ, अल्लाह की निकटता हासिल करने और रजब की बरकतों से लाभ उठाने की नसीहत करते हुए कहा, अल्लाह से संपर्क से जिंदगी, देश और क्रांति के भविष्य को बरकत व रोशनी मिलती है।
इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने 18 फरवरी 1978 को तबरेज के लोगों के आंदोलन को ईरानी कौम की महान क्रांति की एक कड़ी और इस्लामी क्रांति की सफलता की भूमिका करार दिया। उन्होंने इस दिन को तबरेज का नाम रोशन होने का दिन करार दिया और इस बात पर बल देकर कहा कि यह दिन तबरेज के लोगों की पहल कौम के प्रयास के जारी रहने और क्रांति के सफल होने का कारण बना। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि यह क्रांति बंदूक, राजनीति और पार्टीबाजी से कामयाब नहीं हुई, बल्कि क्रांति की कामयाबी की मूल वजह मैदान में लोगों की मौजूदगी थी और तबरेज के लोगों ने अपनी पहल से इस्लामी क्रांति को गति प्रदान की। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारे आज के प्रयास आपको पसंद आए होंगे। कार्यक्रमों के बारे में आप अपने विचारों से हमें अवगत करवाते रहिए। इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। आपसे अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज। Thank you.